ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ तृतीय स्कंध अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। आज इस अध्याय की 31 नंबर श्लोक। एक प्रपद्यते ध्यान्तम् हित्वा इदं सोकळेवरम् कुशल इतर पाथेय भूतद्रोहेण यद्भूतम्। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही संबल रूप में उसके साथ जाता है। कृपया दोहराइए। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही संबल रूप में उसके साथ जाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो वह धन यद्यपि परिवार के कोई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी होते हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यही है कि पाप फल ही उसके हाथ लगता है, धन नहीं। उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्मफल ले जाता है। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्म के लिए अधिक उत्तरदायी है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्कार्य में या भगवान की सेवा में सेवा व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यही रही आती है और नष्ट हो जाते हैं। अतः या तो हम धन त्यागें अन्यथा धन हमें त्यागेगा। सही बात है। अतः या तो हम धन त्यागें अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए, सभी स्कन में दे दिया जाए। कृष्ण भावना में आंदोलन का प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए जो धन है उसको दे दिया जाए। हरे कृष्ण। एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वा इदं स्वकळेवरं कुशलः इतरपाथेय भूतद्रोहेण यद्भूतम्। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही संबल रूप में उसके साथ जाता है। यहाँ धन नहीं जाता है, ईर्ष्या करके जो कर्म किया था ईर्ष्या की तो कर्म जाता उसके साथ है, और कुछ नहीं जाता है। लेकिन पिछले श्लोक में क्या कहा गया था कि इस शरीर को त्यागने के पश्चात एवं कुटुंबं विभ्राण उदरम भर एव वा विसृज्य ही उभयं प्रत्यय भुंगते तत् फलम इद्रिशम। कि शरीर को त्यागने के बाद वह व्यक्ति जो पाप कर्म द्वारा अपना तथा अपने परिवार को सदस्यों को पालन पोषण करता है नारक के जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी नरक भोगते हैं, उनको भी दुख मिलता है। लेकिन इस श्लोक में कह रहे कि नहीं वो अकेला जाता है, ऐसे एक प्रकार की विरोधाभास दिखाई पड़ रहा, लेकिन विरोधाभास नहीं है। पिछले श्लोक में कहते कि वो दुख इसी जीवन में जब तक इस संसार में है उसको तो पाप धन खा रहा था, उसको अब समय वो भी भयभीत रहता है। और प्रभुपाद जी ने इसको क्लियर करते अपने तात्पर्य में, जो प्रकृति में पाप कर्म करके ही धन उपार्जन करता है, जैसे कोई डायरेक्ट किसको मर्डर करता है तो उसको फांसी दी जाती है, सबको नहीं पूरे परिवार वर्ग जो सभी इसके लिए दायी नहीं होते। कभी कभी भक्त कोई ऐसा करता है, किसी भक्त ऐसे को लूटता किसको, ऐसा कोई रिकॉर्ड है किसी भक्त ने किसको चोरी करते हैं कहीं। कल तो उदाहरण दिए थे, लेकिन वो कौन, वो आलवर थे, तिरुंगे आलवर वो लूट कर धन, वो डकैत दल बनाए थे, वो पता नहीं वो खुद जाते कि लूटते लूटने के लिए जाते कि नहीं थे, लेकिन डकैत दल बनाए थे वो लोग जाते थे शायद, लेकिन वो धन लूट के लाकर सब भगवान के मंदिर ही बनाया रघुनाथ जी के, तो कर्मफल से रहित हो गए, उनको नहीं भोगना पड़ा। तो इसलिए जो लोग लूटे थे बाद में उन्होंने क्या किया इनको सब लेकर, उनकी कावेरी में, कावेरी के नदी के बीच में लेकर सबको डुबा दिए, लेकिन वो सबके लिए प्रार्थना किए, प्रभु ये जो लूटे थे सब मुझे दे दिए थे और आपको वो धन में ये मंदिर बना है तो आप इनको सब उद्धार कर दीजिए। तो इसलिए ये श्लोक में तात्पर्य वही प्रभुपाद कहते कि यदि किस पाप धन आपके पास में है तो सब इस्कन में दे दो, तो हमारे जो आचार्य जो लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए फिर आप भगवत धाम जा सकते हैं प्रभुपाद जी। तो कभी कभी होता है भक्त लोग ऐसे करते हैं, नवदा भक्ति में आप देखे एक महान आचार्य ने कौन बंदन के आचार्य कौन है, अक्रूर जी। अक्रूर जी भी एक बार ऐसे शामिल हो गए डकैती केस में, क्या करते थे, सकराजित के पास में था क्या समंतक मणि था, तो जो भगवान कृष्ण द्वारका में अनुपस्थित थे, कृष्ण बलराम दोनों हस्तिनापुर गए थे, तो ये वो समंतक मणि क्या करता था डेली, इसका क्या विशेष गुण था, कितना सोना देता था वो, एक महन बा ऐसे कुछ 40 किलो लगभग सोना डेली वो देता था। कोई किसके पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट रहे कि डेली वो 40 किलो सोना ही देते रहे तो आप लोग में भी लोभ आ जाएगा, बोला अरे स्कूल आए कि हम वो तो सोना क्या करता, हम लोग स्कन में रखेंगे तो वो अच्छा होगा, सोना डेली मिलते रहेगा, 40 किलो सोना डेली मिलेगा, क्या चाहिए, कोई कलेक्शन करने की जरूरत नहीं, सब हम लोग भक्ति करेंगे और पास डेली 40 किलो सोना ही मिलते रहेगा, क्या है चाहिए। तो तीनों को बड़ा लोभी लोभ लोभ आ गया, किसको किसको, कृत वर्मा अक्रूर सतधन्वा, तीनों बैठकर प्लान किए कि इसका छीन लेना, इसको इससे ले लेना चाहिए क्या, ये जो सेमंतक मणि रखा उसे कैसे भी हो, वो ऐसे देने वाला नहीं, जरूरत हो तो इसको मर्डर करके भी ले लेंगे। तीनों प्लान बनाए लेकिन प्रैक्टिकल गया उसको मर्डर करने के लिए, कौन सतधन्वा गया है। ये लोग कैसे ही कर्मी लोग नहीं थे, ये भक्त हैं लेकिन कोई वो उसको सतधन्वा गया मरने मर्डर करने के लिए। और उस दिन सत्यभामा भी थी, सत्यभाम का पिताजी है शक्राजीत, तो सत्यभाम घर में ही थी, उसके सामने ही उसके पिताजी का मर्डर हो गया और वो सेमंतक मणि को लेकर भाग गए, कौन सतधन्वा। और सत्यभामा ने वहीं से भागते 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 अकेली कहाँ चले गई, पिताजी का मर्डर हो गया इसलिए पूरा हस्तिनापुर तक गए भगवान को खबर देने, मेरे पिताजी का मर्डर हो गया और सेमंतक मणि को वो लूट लिए तीनों प्लान करके। भगवान ने गुस्सा होकर वहीं से आए, हस्तिनापुर से आए कृष्ण बलराम में आके क्या करेंगे, दोनों तो छुप गए, मैंने कृतवर्मा और अक्रूर तो सीधे भाग गए, सुने कि भगवान आने वाले, पता है कि सेमंतक मणि वही ले लिए, वो तो लुटा मर्डर के वो मैंने, लेकिन वो जब सुना कि कृष्ण आ रहे, जो सेमंतक मणि वो रखा था सतधन्वा किसको दे दिया, अक्रूर जी को दे दिया। और अक्रूर जी सत वो सेमंतक मणि को लेकर भाग गए, कहाँ चले गए, बनारस वाराणसी काशी में जाकर रहे हैं। और ये भी छुप गया, कौन कृतवर्मा भी राज्य छोड़ के चला, भय से भगवान आ रहे हैं तो कुछ हो क्रोध में कुछ भी कर सकते, तो आए तो सतधन्वा को छोड़े नहीं, भगवान ने इसको ढूंढ के जो मर्डर किया था, जो किसको मर्डर किया था, शक्राजीत को जो मर्डर किया था उसी को मर्डर किया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जो फांसी कोई यदि किसका मर्डर करता है तो फांसी उसी को मिलता है, पूरा परिवार वर्ग को सबको नहीं मिलता है, जो लोग उसके साथ शामिल होते हैं कुछ सबको फांसी नहीं देता, उनको थोड़ा कम सजा दी जाती है, थोड़ा कम दंड मिलता है, यदि वो लोग भी पाप धन खाया व उसमें सम्मिलित होता है, लेकिन इनको पूरे पूरे सेम लेवल के सेम स्तर के शास्ति नहीं मिलता। जैसे सतधन्वा सेमंतक मणि को चोरी करने गया प्रैक्टिकल और मर्डर किया, तो उसको भगवान ने तुरंत आकर जान से ही मार डाले हैं, लेकिन ये दोनों तो छुप गए थे और जानते कि कृतवर्मा उनके मिलिट्री फोर्स का ही चीफ कमांडर था। यदि कोई मिलिट्री फोर्स का, जैसे भारत के कोई पाकिस्तान में कई बार ऐसे ही होता है, उनका जो मिलिट्री कमांडर रहता है, जो चीफ मिलिट्री कमांडर, वही हड़प लेता है किसको, पूरा देश का शासन अपने हाथ में ले लेता है मिलिट्री के शक्ति के बल पर। सतधन्वा के पास में पूरा नारायणी सेना के वो मुख्य सेनापति था, जादव की जो मुख्य सेनावाहिनी, लेकिन वो जानता था कि पूरा सेनावाहिनी के साथ ले जाने पर भी मैं कृष्ण बलराम के साथ लड़ नहीं सकूंगा, ये अकेले ही काफ़ी है, तो भाग गया वो भगवान के डर से। लेकिन भगवान जानते थे कि वो भक्त है, डिवोटी है, तो इसलिए अक्रूर को भगवान कहे कि इनको क्या करें, डिवोटी है, कोई एक बार कोई ऐसे कारण से ऐसे कर दिया कुछ काम से, ये कहते कि अक्रूर जी ने कैसे ऐसे शामिल हो गए, धन के मोह कैसे लग गया, इतनी बड़े महान भक्त है जिनका मैं नवदा भक्ति की एक अंग है, बंधन के आचार्य मानते हैं, तो वो कैसे इसे काम किए। कहते कि इनको गोपियाँ की अभिशाप था, किनको, अक्रूर जी को है, अक्रूर, अक्रूर का अर्थात जो क्रूर नहीं है, संत है, साधु है, पूरा है, जो क्रूर नहीं है, बड़े दयावान है, लेकिन गोपियाँ लोग ने कहे कि इसका नाम अक्रूर है लेकिन ये तो क्रूर है, क्रूरों की केवल साधारण क्रूर व्यक्ति नहीं है, तो क्रूरों की नहीं, क्रूर व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों की शिरोमणि है, क्योंकि हमसे छीन लिया, किसको, कृष्ण को छीन के ले गए हैं, इसलिए बड़े दुखी थे गोपियाँ लोग ने, इसलिए इनको भी भगवान के दुख विच्छेद सहन करना पड़ा। ये जाकर 2 साल रहा कहाँ, काशी, वाराणसी, लेकिन वाराणसी में रहकर वो सुखी था नहीं, सब समय पश्चाताप करते थे, मैं कृष्ण के विच्छेद को सहन नहीं कर, वो भी महान भक्त थे, अक्रूर में बड़े वहाँ पर बनारस में लड़के रो रहे थे क्या करूँ, लेकिन सेमंतक मणि को भी नहीं दे रहे थे किसको वो पास में ही रखे थे है? तो भगवान ने बुलाया इनको, बोला कि मैसेज भेजा कि अरे अक्रूर आज मामा होते थे, नहीं क्या उनके अंकल होते थे, ऐसे कुछ है, अंकल होते थे, तो उनको बोला आप वापस आओ, मुझे आपसे आपका सेमंतक मणि लेना नहीं है, खाली पब्लिक में यहाँ लेके आओ, मैं सबको दिखाऊंगा कि यही सेमंतक मणि है, और लोग नहीं तो पब्लिक सोच रहा है कि सेमंतक मणि की कौन रखा है, तो आप लेके आओ, थोड़ा पब्लिक को दिखाई दिया जाए यही है सेमंतक मणि है, इधर ही है, अक्रूर जी को, तो आप लोग जब किया काम तो पब्लिक में कम से कम तो लोग जाने कि हाँ आप किया, और ये ताप तीनों मिलकर ये काम किया है, क्योंकि भगवान ने पहले मांगे कहे थे सत्यजीत को, जब वो हस्तिनापुर जाने के पहले सत्यजीत को कहे थे कि देखो तुम ये जो मैंने समंतक मणि रखे हो तो ये अच्छा नहीं है, बहुत मूल्यवान चीज़ है, आपके खतरा हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है, तो इसको दे दो, हम ट्रेजरी में रख देते हैं। कहाँ? द्वारका की जो राज हमारा ट्रेजरी में रखते हैं, सोना चाहिए तो आप यहाँ से ले जाओ जितने सोना मिलता है, लेकिन इसको रखो, नहीं तो आपके जान की खतरा हो सकता है कभी, लेकिन सोना नहीं, अब भगवान के निर्देश नहीं मानने के कारण उसका मर्डर हुआ, जो भगवान से, तो इसलिए लोग सोचे कि ये पहले जो कृष्ण इनको मांग रहा था, किनको? सत्यजीत को, वो दे दिया नहीं था, लगता कि ये उनसे छीन लिया होगा, यही प्लान करके उसका बलात्कार से छीन लिया है? पहले तो एक बार बदनामी हुआ उसका, उसको जाकर उसी मणि के लिए पर वो भगवान को युद्ध करना पड़ा, किससे? जाम्बवान से है? पहले सेमंतक मणि ओरिजिनली किसका था, कहाँ से आया सेमंतक मणि? सोनगढ़, रूप गोस्वामी के आप जो पढ़ोगे कौन सा नाटक बिंदग्ध माधव, पता लगा कहाँ से था, ये सेमंतक मणि था, जो कि वो शंखचूड़ राक्षस जब गोपियों को हरण कर रहा था कृष्ण भगवान के साथ समक्ष में जाकर वह, तो भगवान ने इसको जब शंखचूड़ राक्षस को मारे मुष्ठी में आघात करके उसके सिर पर, तो इसके सिर में ये मणि था है, ये सेमंतक मणि उसके सिर में ये मणि था, इस मणि को भगवान ने निकाला, निकाल कर लाकर इच्छा तो था राधारानी को देने के लिए, लेकिन बलराम उपस्थित थे तो क्या करेंगे, तो बलराम को बोल के भाई को दे दिए, दाऊजी को दे दिए, लेकिन दाऊजी कन्हैया के मनोभाव को जानते थे, तो इसलिए दाऊजी ने बोला है ललिता जी को, ललिता जी बोले कि इसको लेके दे दो, किसको? राधारानी को दे देना, तो राधारानी को, इसलिए मणि सेवंतक मणि किसके पास आया पहले? राधारानी के पास, लेकिन रूप गोस्वामी कहते कि राधारानी के पास में तो मणि आ गए, लेकिन राधारानी इसको सदा धारण करते थे अपने गले में धारण करते, सेमंतक मणि भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई और फिर बलराम के माध्यम से, तो इसलिए वह सदा इसको धारण करते थे, लेकिन जब कृष्ण चले गए द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की विच्छेद इतनी सताया राधारानी को, एक बार वो विशाखा के साथ में जमुना में प्रवेश कर गई, प्रभु को स्वयं वर्णन करते हैं, विशाखा जो है अभिर्ण जमुना मानी जाती है, जमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री, इसलिए विशाखा जी ने जमुना में प्रवेश किया, तो जमुना जी जो अभिन्न विशाखा, तो उनको वहाँ से अपने पिताजी के लोक में ले गई, सूर्य लोक में, सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा ने तो बड़े आदर से अपने पुत्री से भी अधिक स्नेह करते थे, किनको? राधारानी, और राधारानी के जो जीवन काल में देखोगे कि तो वो किसकी पूजा करने जाती थी डेली? सूर्य पूजा करने के, सूर्य कुंड जाती थी है? सूर्यदेव बड़े बड़े उनके पत्नी उनके अपने वात्सल्य में भर गए राधारानी को प्राप्त करके, बड़े उनको लालन पालन करते थे, लेकिन राधारानी तो स्वतः कृष्ण की संग के लिए व्याकुल रहती थी, तो इसलिए सूर्यदेव की भक्ति करता था कौन? सत्यजीत, ये सूर्यदेव की तपस्या किया बहुत साल, तो सूर्यदेव इसलिए प्रसन्न होकर इसको ये मणि तथा किसको दिए? सत्यभामा, इसलिए राधारानी का ही विस्तार मानी जाती है, यदि वो राधारानी साक्षात रूप में सदा वृंदावन में निवास करती हैं, राधा कृष्ण कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं की ही विस्तार, उन्हीं की विस्तार ही थी कौन? सत्यभामा, जो सूर्य लोक में जाकर रहती थी, इसलिए सत्यभामा के साथ में ही वो सेमंतक मणि आया, कहाँ? किसके पास? सत्यजीत के पास आया था, तो इससे बड़ा इतिहास है, लेकिन यहाँ पर हम देखे हैं कि तो भगवान ने कैसा दंड दिया, जो पार्टी को जो इसको चोरी किया, तो इसलिए धन का लोभ है, लोभ ही मृत्यु का कारण होता है, सत्यजीत यदि वो दे देता, भगवान कहे तो दे दो, सुनता था तो उसका कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन दिया नहीं तो परिणाम भोगना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवान आकर देखेगी जो मर्डर किया उसको, उसी को पनिशमेंट दी, उसी को मर्डर किया भगवान ने, उसको मर्डर किया, चोर तो भगवान ही है, भगवान चोर है,
चौरा अष्टक पढ़े ना, एक अष्टकम है भगवान के ग्लोरिफिकेशन कर रहे किस क्या क्या कहते चौरा अष्टकम है। चोर है, माखन भी चोरी करते हैं, गोपियों की वस्त्र भी चोरी किए हैं, हैं बहुत कुछ लूटते हैं, वो भी लुटारे हैं। बंशीदास बाबा जी महाराज थे महान संत, तो उन्होंने गौरनिताय और गोपाल का पूजा करते थे। तो एक मायावादी साधु आया, पूछा कि बाबा ये क्या है, ये कौन है? बोले ये है चोर है, ये गोपाल है। गोपाल ये कौन है? चोर है। वो बोला क्या चोर को पूजा करते ये? ये गौरनिताय ये कौन है? बोले ये तो गैंग लीडर है दोनों। तो महाप्रभु भी चोरी करते थे बचपन में, गौरांग जो निवाय के थे तो वो भी चोरी करते थे, जाते थे पड़ोसी में सब जाकर केला फला दही जो भी सोच गए केला रात को चोरी करने के लिए क्या करते थे, और सब बुरी अंदर ढाल के भैंस की जैसे मैंने गाय जैसे ऐसे जाते थे बच्चों के साथ में जाकर वो केला सब तोड़ के लाते थे। वो घर वाला सोचते थे कि अरे गाय आया ना क्या, भगाते थे। अरे भगवान को भी चोरी किया, भगवान चोरी करें तो उनको भी चोरी करके ले गए थे, दो दो चोर आए थे उनको ले गए बचपन में जो गोपाल थे निवाए थे छोटे बच्चे थे तो उनको भी दो चोर चोर उठा के ले गए थे ना, उनके शरीर में इतने सारे अलंकार देखकर दो चोर आए इनको बोले कि निमाए इधर आओ संदेश लो मिठाई दिखा कर इनको कांध में बैठा कर लेके गए लूटने के लिए उनके जगह। लेकिन वो लूटेंगे क्या, भगवान तो इनको फिर घुमा फिरा के लाके वहीं पहुँचा दिए जहाँ से गए थे। तो इसलिए तो चोरी करना यदि भगवान चोरी करने से उनको कोई शास्ति मिलता है, हैं? तो क्योंकि उनका सब संपत्ति हम उसे समझते नहीं बात को, ये सारे संपत्ति किसका है, उन्हीं का है। ईशावास्य इदम सर्वम, ऐसे भगवान जो लेते तो उन्हीं की संपत्ति वो लेते, वो हमारा संपत्ति थोड़ी है, हम सोचते नहीं। जो साधारण लोग इसलिए गाली देते हैं किनको, कृष्ण को, ये दूसरों का स्त्रियों को का वस्त्र चोरी कर लिया, ये किया वो किया दूसरों के सामने, पर वो सभी उन्हीं का है। हम कृष्ण की इमिटेशन नहीं कर सकते हैं, और यदि हम इमिटेशन करेंगे तो हमको शास्ति मिलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाते के प्रारंभ से जो इस श्लोक के आचार्य ने हमारा आचार्य लोग ने भी टीका करते हैं, दोनों श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्हीं के टीका के आधार पर प्रभुपाद जी ने अपने टीका लिखे। वो भी कहते कि पापार्जितं धनं भुंजन्ते बहवः कैतव नरकं जाति इति याह, जो पाप प्रवृत्ति के पाप कर्म के द्वारा धन उपार्जन करता है कैतव नरक, वो भी नरक में जाता है, और जो उसकी सहायता करते हैं उसके साथ थोड़े बाद में जा वो उनको थोड़ा कम दंड मिलता है, इसको ज़्यादा दंड मिलता है किसको, जो डायरेक्ट एक्शन किया, डायरेक्ट जो चोरी करता है, डायरेक्ट जो मर्डर करता है, लेकिन दोनों ही शास्ति मिलता है इसको, एक को थोड़ा ज़्यादा मिलता है और दूसरे को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन ये जो किया जो कुछ पाप किया, लेकिन इसको सारे यदि बात में भगवान को दे देगा, प्रभुपाद ने बात में ये पॉइंट लाते हैं कि यदि थोड़ा चोरी किया तो दोनों को दंड मिल जाता है, मिलने स्वाभाविक है, लेकिन वो जो सारे लाकर इस दे देगा, कहाँ दे देगा, किसको, कृष्ण भावना में तो आंदोलन में दे देता है, तो फिर इसको हम बचा लेते हैं कृष्ण इसको बचा लेते हैं। अम्बरीश प्रभु आल्फ्रेड फोर्ड वो मिले प्रभुपाद जी को, कैसे मिले ना, श्याम सुंदर प्रभु इनको लेके आए थे, यंग थे अमेरिका में तो उनको लेकर आए थे प्रभुपाद जी को मिलाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़े कुछ बैठकर ऐसे कुछ लिख रहे थे अपना काम। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले कि प्रभुपाद हियर इज अल्फ्रेड फोर्ड द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ अमेरिका, प्लीज ही कम टू मीट यू। प्रभुपाद कुछ आंसर नहीं थे, बैठे थे अपने कुछ तो होते पूरा पेशेंस के हो, फिर जोर से और थोड़ा जोर से सोचते इसलिए प्रभुपाद ने को और सुना ही नहीं पड़ा, जोर से बोले और थोड़ा, प्रभुपाद हियर इज अल्फ्रेड फोर्ड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, प्लीज वेलकम हिम, प्लीज टॉक समथिंग, ही इज इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू, प्लीज। प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले, पूरा इंप्रेशन हो गया, एक बहुत जोर से बोले प्रभुपाद। वो बोले मैं व्यक्ति को लाने के लिए कितना प्रयास करके इतने बड़े आदमी को लेके आया, सामने प्रभुपाद कुछ बोलते ही नहीं है। जोर से हियर इज हेनरी अल्फ्रेड फोर्ड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ, जो जोर से एकदम इंप्रेशन बोले। तो प्रभुपाद ने थोड़ा देखे, चश्मा देखे, श्याम उनको देखे, श्याम सुंदर प्रभु को भी देखे, कहे कि व्हाई यू डिड नॉट ब्रिंग हेनरी फोर्ड। यानी कि प्रभुपाद जी को पता नहीं था हेनरी फोर्ड की डेथ हो चुका है, जानबूझकर बोले व्हाई डिड नॉट ब्रिंग हेनरी फोर्ड। तो अंबरीश प्रभु कहा करते कहते थे कि जो इंटरव्यू ले रहे थे मैं पर, तो आप कैसे डिवोटी बना, तो बोले कि ये जो बोल रहे थे कि कहे कि सीधे व्हाई यू डिड नॉट ब्रिंग, परमात्मा वॉज टेलिंग मी फ्रॉम इनसाइड व्हाट दिस पर्सन इज वांट टू टेल यू, ही नोज दैट हेनरी फोर्ड हैज गन, हेनरी फोर्ड की मृत्यु हो चुका है, लेकिन ये व्यक्ति यही कहना चाहता है जैसे ही वो हेनरी फोर्ड चला गया और उसका संपत्ति यहीं रह गया है, इसी प्रकार तुम भी एक दिन जाओगे ऊपर और तुम्हारा संपत्ति यहीं रह जाएगा यदि इसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे। एक शुद्ध भक्त क्या कहना चाहता भगवान इसको बता देते हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया, मैं तो वो मुझे कुछ बोले ही नहीं, केवल इतने बोले, लेकिन मैं समझ गया, मेरे मैं तुरंत ही वहाँ वहीं पर जीवन में किसको प्रणाम नहीं किया था, हम प्रणाम करके सीधे वापस आया है। इसलिए शुद्ध भक्त भी चपरासी भी नहीं करते किसकी, सीधे बोलते हैं यहाँ भी, इसलिए सीधा सीधा बोले प्रभुपद ने तात्पर्य में, जो धन है किसकी सेवा में देना चाहिए, कृष्ण की सेवा में, यदि धन को आप नहीं छोड़ोगे धन आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो कृष्ण का है। लक्ष्मी किसके साथ रहेगी, नारायण के साथ रहेगी, आपके साथ थोड़ी रहेगी। तो आप इसको रावण की तरफ छीन के रखना चाहोगे तो वो केस कितना दिन रखोगे, आप नहीं छोड़ोगे, प्रेम से नहीं देगे, हनुमान आएगा फिर आपको जलाएगा, पिटाई, फिर आपके सब लंका फिर जलाकर फिर लेके जाए, फिर सब ध्वंस हो जाएगा। ये आपका नहीं है, सारे कृष्ण की है, जो को संपत्ति कृष्ण का है, लक्ष्मी नारायण के साथ ही रहते हैं, दूसरे साथ नहीं रहेगी। अब बलात्कार में जो रखोगे तो आप रावण ही है, फिर हनुमान का सामना करना पड़ेगा, फिर और के फिर भगवान स्वयं आएंगे, फिर कितना तक इतने क्यों। शक्राजित को यही बात भगवान ने कहे थे कि ये दे दो, तुम्हारे पास मत रखो, ट्रेजरी में रख देते, सुना नहीं। तो इसी प्रकार इसलिए प्रभुपाद ने स्ट्रेट कह रहे तात्पर्य में है, प्रभुपाद कभी जो सत्य को कहने के लिए, साधारण तो लोग क्या कहते कि सत्य कहना और क्या कहना, भगवत गीता में भगवान कहते प्रियंग बद सत्यंग बद प्रियंग बद, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि संत के लिए साधु के लिए ऐसा सब समय जरूरी नहीं है, साधु स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। यदि यही नहीं करोगे, आप धन को देना नहीं चाहते, तो आप धन आपको ही छोड़ देगा, धन चले जाएगी आपके पास, लक्ष्मी अपने पति के पास चले जाएगी कैसे भी है? तो इसलिए हमें धन की उपयोग धन के प्रति लोभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे संसार में कौन है धन की लोभ नहीं करता, सब लोग प्यार करते हैं इसको धन तो, इसलिए कहा गया कि मधु से अधिक मधुर है और सूर्य की रश्मि से अधिक उजाला दिखता है। मनी स्वीटर देन हनी एंड ब्राइटर देन सनशाइन। मनी कौन नहीं चाहता, सभी चाहते धन को। जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी प्रकट हुई, कोई नहीं चाह कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं चाहते थे उसको, जितने भी था सारे राक्षस देवता सब ब्रह्मा समेत जितने भी देव सभी लोग सोचते थे कि, लेकिन स्वाधीनता है लक्ष्मी किसके पास जाएगी, बोले कि ठीक है उन्हीं वर्णमाला उनको दे, बोले वो अपने इच्छा से जिसको पहनाएगी वही उसी क्या। लक्ष्मी सभी के पास गए माला लेकर, एक एक देवता के पास जाए, सब राक्षस लोगों को तो पहले रिजेक्ट कर दिए, तब देवताओं के पास में आए एक एक करके, सबके सबका सबका कुछ ना कुछ बदगुण निकालते रहे, इसका एक गुण ये परफेक्ट नहीं है, इसका एक कमी है, इसका एक कमी है, ऐसा कमी है, लेकिन सभी लोग लड़ाई तो हो कि देख रहे थे लक्ष्मी हमको ही किसके पास जाते ही तुरंत माला हमारी गल में डल जाए। लक्ष्मी सबके पास जाते 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 अंतिम में कौन बैठे थे, नारायण के पास गए, भगवान जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर आधारित हैं। तो कहकर कहे कि ये व्यक्ति का भी एक बदगुण है, इसकी कमी एक है कि मैं इसको चाहती हूँ लेकिन ये मेरी प्रति आसक्ति इसका है नहीं, आप लोग जितने और अच्छे सब लोग, तो आप लोग मुझे चाहते हो लेकिन मैं आपको नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये व्यक्ति का ही कमी है कि मैं इसको चाहती हूँ लेकिन वो उसका कोई आसक्ति नहीं, वो मुझे नहीं चाह, ये कह के ही माला पहना दी है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण जिसको लक्ष्मी, जो लक्ष्मी को नहीं चाहता है, इसलिए कहते कि प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित है। जो नहीं चाहता उसके पास, जो इसको लेकर पूरे पूरे भगवान की सेवा में लगाएगा तब तो उसके पास लक्ष्मी आएगी। प्रभुपाद जी कितना पैसा लेके गए थे हैं, 40 रुपया जो खर्चा किए थे अमेरिका में, खर्चा भी नहीं किए थे, 40 रुपया जो लेके गए थे जब वहाँ से अमेरिका से अमेरिकन शिष्यों अपने शिष्यों को लेकर आए इंडिया में, फिर वो दिल्ली से वृंदावन आने के लिए वो 40 रुपया जो रखे, 40 रुपया कौन लेता था अमेरिका में, कोई रुपया लेता ही नहीं था। वो 40 रुपये को वहाँ टैक्सी में आने के लिए वो टैक्सी वाला को दिए, लेकिन 40 रुपया से फिर रूपा जी कही मेरे से बड़ा और कौन कुछ आश्चर्य दिखा सकता है। 40 रुपया से मैं इतना बड़ा संस्था बनाया कितना करोड़ का है, क्योंकि भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पण किए थे। तो लक्ष्मी उनके जानते थे कि इसके पास जाने से मुझे भगवान की सेवा में लगाएगा है, और आएगा तो फिर वहाँ परमानेंट रहती, जहाँ पर धन वहीं पर स्थिर रहती है। यदि वो चंचला है, लक्ष्मी को चंचला कहते ना, एक जगह नहीं रहने वाली, वो भागते रहते हैं सब जगह, क्योंकि लोग इनको यूज नहीं करते, जो हाँ नारायण की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वहाँ से फिर दूसरे जगह भागती है। लेकिन जहाँ पर इसकी सेवा सब समय नारायण की सेवा में लगता तो वहाँ स्थिर रहती, जानते हैं। तो इसलिए हमें जितने भी धन दोगे इसकन में, इसको प्रभुपा जी कहते कि हम लोग ऐसा ही नहीं कि मायावादियों की तरफ, वो रिलीजियस कन्फ्रेंस था शिकागो में, सभी लोग वहाँ पर बहुत लोग आए थे, सब मायावादी लोग बहुत लोग, सबको बोलने के लिए सुजोग दिया गया। तो गुरु को ग्लोरिफिकेशन करने के लिए एक मायावादी खड़ा होकर ग्लोरिफिकेशन कर रहा, हमारा गुरु इतनी वैरागी, इतनी वैरागी, इतनी वैरागी है कि इनके पास में यदि सोने की पहाड़ रख दिया जाए तो उनकी तरफ वो देखने भी नहीं चाहते, उनको देखेंगे ही नहीं, वो साधारण मिट्टी और पत्थर ढेला जैसे हमने वैसे उसको उसकी तरफ उनकी कोई आसक्ति नहीं होता है। लेकिन आपने इस्कन के जो टर्न आ गया, हमारे जो प्रतिनिधि थे खड़ा हुए, बोले कि हमारे गुरु इतनी वैरागी है कि इनको पूरा सोने का पहाड़ यदि दिया जाए वो कहेंगे इतने सफिशिएंट नहीं है, ये दुनिया का जितने भी संपत्ति है, जितने भी सोना सब है, सबको ला कर मुझे दे दो, क्योंकि ये सारा किसका है, ये सारे दे दो, ये सारे संपत्ति कृष्ण की सेवा के लिए है, ये सब मुझे दे दोगे तो मैं इसको सारे को सारा कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि अंतिम में, तात्पर्य जी अंतिम में, यदि आपका इसमें धन है इसको दे दो, कहाँ दे दो, इस्कन में दे दो, और हम इसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। कितनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कितना बड़ा बड़ा कहीं मंदिर बन रहा, कहीं कितना सारा सेवा का जरूरत है, और यदि आप धन नहीं दोगे धन आपको छोड़ देगी। तो इसी प्रकार हमें लूटना चाहिए, चोरी तो करने के प्रवृत्ति भगवान के पास जो था ये हमारे पास में रहना स्वाभाविक है। भगवान के पास चोरी का लक्षण है ना, वो जब माखन चोरी करना कि एक किसको ये सब है, तो स्वाभाविक है हमारे पास में भी थोड़ा ऐसा ही चोरी का लक्षण रहना। लेकिन चोरी किसको करना चाहिए है? वो मार्केट खोल के बैठे नित्यानंद प्रभु कह कि यहाँ से ले लो, जितने लूटने पर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या नदिया नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण नदिया गोद्रुमे नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण नदिया गोद्रुमे श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। आगे क्या याद नहीं आ रहा है,
वो तो नेक्स्ट लेनी, बीच में एक लाइन है, चलो। कृष्ण र संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्ण र संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दयान कृष्ण नाम एई धर्म, एई सर्वधर्म सार, में भूल गया तो पता नहीं आज, ये तो मैं कई बार गाता हूँ लेकिन आज भूल गया। प्रभु रो आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा, प्रभु रो आज्ञाए भाई भज कृष्ण कहो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, ये नाम हाट, ये कौन सा हाट का अर्थ क्या होता है, बाजार, नाम की हाट है, वो बाजार बना के रखे होली नेम की बाजार, और वहाँ कितने भी लूटने से जो देख रहा है, देखने वाला भी आपको ही बोले, बोलने वाला नहीं है, बोले ले ले जाओ लूटो, इसको लूटना है, इसी को लूटो, किसको लूटो, नाम, हरि नाम को जितने लूट पाओगे, अच्छा इतने कितने भी लूटने का स्वभाव है, लेकिन इसको लूटना है ऐसे ही लूटो, भगवान के नाम को लूटो, इसमें कोई पैसा भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा पड़ेगा नहीं, केवल श्रद्धा होना चाहिए आपके पास में, तो इसी को लूटना है, लुटेरा जो है तो हमारा स्वभाव है लूट चोरी करना, लोभ है, काम क्रोध लोभ ये सब है, भगवान के पास में भी ये है, लेकिन वो दूसरे अप्राकृत रूप से, भगवान के पास में जो जो लस्टी डिजायर है, गोपियों की सबका प्रति आकर्षण होना, रास में नृत्य करना, ये सब, लेकिन इसको जीव इमिटेशन करता है, किसका, भगवान के जो स्वरूप, तो उनके कार्यकलाप का हम इमिटेशन नहीं कर सकते हैं, वो आदेश दिए गीता में जो इसको फॉलो करना है, लेकिन इसको इमिटेशन करने से हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी फल भोगना पड़ेगा, जैसे अक्रूर जी ने नहीं सॉरी शंकराचार्य ने आदेश पालन नहीं किया तो उसको जान देना पड़ा, इस प्रकार भगवान ने कहे गीता में जो, गीता को फॉलो करो, करो कृष्ण शिक्षा, गीता में जो बताए उसी के आधार पर हमको चलना, हम भगवान को इमिटेशन नहीं कर सकते, भगवान के पास में अपना राधा है तो हम भी सोचेंगे हमारे पास भी हमारा राधा होना चाहिए, भगवान नाचे तो हम भी नाइट क्लब में जाके नाचेंगे, तो इसका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए जमदूत है जमदूत, इसलिए कहा गया, इसके लिए इसको भोगना पड़ेगा, लेकिन नाचो वही काम करो ना, कहाँ नाचना है, यहाँ की नाचो, इस्कन में नाचो, नाचना खाना और गाना ये स्वाभाविक है, भगवान के पास है हमारे पास है, लेकिन भगवान के सामने आए कि नाचो, भगवान को साथ में रखो, केंद्र में रखो, यहाँ आकर नाचो, यहाँ गाओ और यहाँ खाओ, ये नहीं करोगे नाइट क्लब में जाकर नाचोगे गाओगे खाओगे तो कहाँ जाओगे, जमदूत आएंगे और छड़ी लेकर आए, कहाँ नाचना था, कहाँ गाना था, कहाँ खाना था, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इतनी सारा मंदिर बनाकर ये सस्ता बनाया, जब लोग मंदिर भी नहीं जाते उसके लिए जगन्नाथ रथ यात्रा भी किया गया, तू नाचना हो इतने तो जगह नहीं मिला और कहीं नाचने के लिए, वही नाचना था तुझे, जगन्नाथ जी के सामने नाचना था, राधा कुंज बिहारी के सामने वहाँ जाके नाचना था, आज संडे में है फीस्ट भी है, नाचोगे तो यहाँ प्रसाद ही मिलता खाने के लिए, यहाँ नाचा नहीं, यहाँ गाया नहीं और फिल्म गीत गाया, हरे कृष्ण मंत्र लगा कर क्या गाया, फिल्म गीत गाएगा अभक्य भक्खण करेगा और अंत में आए कौन आएगा, जमदूत आएंगे तो पिटाई करेंगे, अगर पिछले श्लोक में से बताया गया है कैसे लेके जाते जमदूत, तो फिर उसका भोगना पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने कितने दयालु है हम सभी की कृपा, आ सभी को हमको स्वभाव दिए हैं कि नहीं सर हमको व्यवस्था दिए कि हम यहाँ पर आए, यहाँ नाचे गाएं और लूटना भी तो इसको, यहाँ पर जो प्रवृत्ति है लूटने का लोभ है इसको भी इसी, इसके लिए लोभी बनो, इसके लिए हरिनाम संकीर्तन करने में है, भगवान के नाम जपने में, भगवान की कथा श्रवण में है, लोभ साधु संगे हरि कथा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध अभक्त द्वेषी जाने, लोभ साधु संगे हरि कथा, इसमें उपयोग करो फिर आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा है, लेकिन
आ यदि हम इनके निर्देशन को फॉलो नहीं करेंगे भगवान के निर्देशन को और हम इसकी इमिटेशन करेंगे भगवान के कार्य, तो फिर हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। तो आप लोग को नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आप सब हरे कृष्ण जपा करते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। पब्लिक के लिए कहा जा रहा है, जनरल कर्मी लोगों के लिए। आप लोग तो सब हरे कृष्ण मंत्र जपा करते हैं। स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अजामिल थोड़ा सा भक्ति किया था बचपन में, तो भगवान ने इसको चांस दिया, सेकंड चांस दिया अंत में। तो आपको भी चांस दे, आपको क्या, आप तो सब ऑलरेडी भक्त है, नाच रहे हो, गा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, तो इसलिए आप सब कहाँ जाओगे। लेकिन फिर भी कोई छुपा छुपा के रखता है कुछ है? छुपा छुपा के रखता है ना, क्या होगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहते कि जो छुपा हुआ कोई कुछ रखा तो इसको दे दो कृष्ण को, नहीं तो फिर आपको छोड़ देगी कभी है। उसके लिए फिर आपको परेशानी भी होना पड़ेगा, बदनामी भी होना पड़ेगा। कितना समस्या, अथॉरिटी पर पता लग जाएगा कि ये छुपा के रखा है इतने पैसा के, तो क्या होगा आपका, फिर पनिशमेंट दी जाएगी, सबके सामने आपके बच्चे बेइज्जत होगा है? तो कितने समस्या, पहले से इसे वॉलंटियरली दे दो और इस कृष्ण की सेवा में है, फिर आपके भी कल्याण और सेवा आपके भी, आपका भी आत्मकल्याण होगा और आप भी भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाओगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे है? और इस श्लोक में तात्पर्य मार कुछ विशेष कुछ नहीं। कोई प्रश्न उत्तर है, प्रश्न कोई कोई प्रश्न है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर भी होना चाहिए थोड़ा।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवचन के लिए। महाराज ऐसा लगता है कि जैसे कभी हमारा खुद का जो धन है तो इसमें, और ये लगता है कि मैं, मेरे पास है, जब जरूरत होगा तो मैं दूंगा, मेरे पास रहने दो, जब जरूरत होगा तो मैं साथ करूंगा।
तो वही तो शुक्राचार्य कह रहा था, ये कहकर भगवान कहे कि दे दो सेमंतक मणि, हम ट्रेजरी में रख देते, यहाँ पास में मत रखो, इतने मूल्यवान वस्तु है, हाँ तो आपके पास क्यों दे दोगे, आप जरूरत होगा क्यों दे, आप पहले दे दो मंदिर में कोसा आपके लिए रखा जाएगा, आपको जरूरत होगा तो मंदिर से अथॉरिटी आपको दे देंगे, उल्टा ना है, उल्टा क्यों करोगे। आप दे दो मंदिर पर अथॉरिटी उसको रखेंगे, आपको जरूरत है तो मांग लेना, ले लेंगे।
तो विश्वास नहीं आता कि मतलब मुझे मिलेगा भगवान से, मुझे जरूरत हो सकती है,
भगवान से विश्वास नहीं आता तो फिर वो शुक्राचार्य का हालत होगा क्या होगा उसका हालत, वो तो ये विश्वास नहीं करता, इसलिए ये इतना इतनी बड़ी चीज है धन के बारे में किसी को विश्वास नहीं किया जाता। प्रभुपाद जी किसी को विश्वास नहीं करते थे, किसमें, धन और स्त्री, ये दोनों बड़े आकर्षक, यही दिल्ली की लड्डू है, सब खाना चाहते हैं। ऐसे प्रभुपाद ने कहा हिंदी लेक्चर में, कह रहे कि ये दिल्ली की लड्डू है, जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया है। प्रभुपाद ने कहा था अपना ट्रेजरी की चाबी किसी को नहीं देते थे, प्रभुपाद जी अपने पास में ही रखते थे हमेशा है। उत्तमा कृष्ण महाराज सेक्रेटरी थे हमारे वृंदावन में ही, प्रभुपाद ने जब भी जाते थे स्नान करने के लिए भी ट्रेजरी की चाबी साथ में लेके जाते थे, उनका पर्सनल ट्रेजरी, आज भी देखो वृंदावन में है वो ट्रेजरी है, प्रभुपाद जी का ट्रेजरी, क्योंकि प्रभुपाद जी मिलने आते थे, सब डोनेशन देते थे, प्रभुपाद जी उसके अंदर रखते, सब ट्रेजरी में डाल के रखते थे और लग करके रखते थे, उसी पैसा में ही MBT बना, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। प्रभुपाद जी जो पर्सनली जो डोनेशन देते थे रूम में कोई मिलने के बाद, तो उस पैसा को रख रख के प्रभुपाद जी ने ये ट्रस्ट बनाया भविष्य में चिंता करते हुए, किसका, मायापुर और वृंदावन। पहले जैसे और कोई प्रचार, लेकिन ये दोनों सेंटर को कम से कम बचाने के लिए ये मायापुर वृंदावन ट्रस्ट MBT। तो प्रभुपाद जी जब गए स्नान करने, लेकिन एक दिन चाबी लेने भूल गए, चले गए बाथरूम में स्नान किए, आधा स्नान करके पूरा आधा टावल भिगा, टावल पहने फिर बाहर निकल के आए, बाहर वो था चाबी छोड़ गए थे उसको, फिर लेके फिर गए, कोई नहीं था कमरे में, अकेला बैठे हुए थे, कौन, तुम्हारा विष्णु महाराज। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, क्या प्रभुपाद ने स्नान करके आया, आकर फिर अपने कपड़ा चेंज किए, फिर तिलक किए, तो तिलक किए तुम्हारा विष्णु महाराज जाकर प्रणाम किए, बड़े नम्रता से कहे, प्रभुपाद आपने इसे आधा स्नान करके ही आधा भिगा हुआ क्यों आए, दोबारा बाहर निकल के आए और चाबी, यही ट्रेजरी की चाबी लेके गए, फिर आपको क्या हमारा प्रति विश्वास नहीं है? हम लोग ने पूरा लाइफ आपके लिए दी है, संपूर्ण रूप में हम समर्पित है, हमको हमारा लाइफ सब कुछ दिए आपको, और आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ कोई नहीं था, मैं ही बैठा हूँ, और आपने आकर ट्रेजर चाबी लेकर फिर गए, भीगा आधा भीगा शरीर में। तो प्रभुपाद ने कहे कि मैं आचार्य हूँ तो आचरण करके सबको सिखाना मेरे काम है। इसी प्रकार तुमको भी सीखना है इससे, इस मामला में किसको विश्वास नहीं करना चाहिए? किसके मामला में? धन के मामला में है। ये धन ऐसा ही चीज़ है, हमको कहीं भी हमारे बत्ती को बिगाड़ देता है, कहीं भी है पाप कर्म में लगा देता है, हम जानते ही नहीं करना चाहिए फिर भी है कर लेते हैं। वही तो वही सोचता ना कि वो बोल रहे ना धन है तो अरे वो भी रख लेते, जो मांगेंगे अथॉरिटी दे देंगे। नहीं पहले दे दो अथॉरिटी को, अथॉरिटी जो तो फिर आपको चाहिए तो अथॉरिटी आपको देगा। तो वो क्या क्या प्रभुपाद ने कहे कि देखो आप भी भविष्य में मेरे बात में आप भी सब आचार्य बनोगे, तो आपको भी ये समझना चाहिए ये दोनों मामला में किसको विश्वास नहीं करना चाहिए, धन और स्त्री। चाहे आप कितने क्लोज फ्रेंड हो, और आपके अभी नया नया शादी हुआ, आपकी नवा जो क्या पत्नी सुंदरी पत्नी आपके साथ है, आप कहोगे मेरे को ये दूर जाना है तो दोस्त के पास में थोड़ा दिन रह जाऊँ, ये नहीं होता है, है? बद्ध जीव को आकर्षण करने में दोनों विशेष, इसलिए सब भूल जाता है, अपने सब सद्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों से विश्वास नहीं करने का, धन को हमेशा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते आप धन को छोड़ दो, भगवान को दे दो, नहीं तो धन आपको छोड़ देगी। आप यदि धन को छोड़ भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, धन आपको छोड़ के भगवान के पास चले जाएगी, हैं? अंत में तो नहीं तो मृत्यु के समय में जाओगे, जैसे प्रभुपाद ने ये भी कहे कि मृत्यु सर्वहर चाहो, अंतिम समय में सब छीन लिया जाएगा। यहाँ पर वो एक शब्द का वो हाथ खर्च कहते हैं, कौन सा शब्द प्रभुपाद ने कहते कि यदि आपके पास में कोई नहीं, आप अकेले जाओगे, आपको हाथ खर्च भी नहीं दिया जाएगा, है? अरे जमलोक में जाओगे तो हाथ खर्च कहाँ, जमदूत पिटाई करके लेके जाएंगे, हाथ खर्चा क्या है? ये शब्द को देखे रास्ते का खर्च है, पाथेय हो पाथे का संबल, तो उसके प्रभुपाद ने साथ में अर्थ करते कि रास्ते का खर्च, रास्ते का खर्च भी नहीं मिलेगा, पिटाई खाते रहोगे तो उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, छीन लेंगे फिर है? कोई आपको पता लगे, कोई इधर कुछ पैसा रखा है, आप अथॉरिटी को पता लगता है तो क्या करेगा? उस व्यक्ति से धन भी ले लेंगे, सब लोग मीटिंग करके इसको चेकिंग करके सर सर के पैसा भी ले लेंगे सारे, और या ब्रह्मचारी को इधर रखा, और बाद में इसको मंदिर से भी इसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए प्रेम से दे दो, कह रहे कि इसलिए जो गृहस्थ लोग भी उनको भी देना चाहिए, गृहस्थ लोग को कितने देना चाहिए? 50%। एक गृहस्थ ने मुझे बोला दिल्ली में, बोला कि ये महाराज सब लोग यही इंटरप्रिटेशन करते रहते कि 50% दे देना चाहिए, दिल्ली में नहीं मुंबासा में, तो ये इसका रूप गोस्वामी ने जो दिया था 50% कब दिया? जब घर छोड़ा, जो सब घर संसार छोड़ के महाप्रभु को मिलने गए पूरा वैराग्य जीवन निभाने के लिए तब दिया। तभी हम जब सन्यासी आश्रम लेंगे तभी देंगे ना। मैं बड़ा जोखती तो इसका बोला महाराज आप हमेशा बोलते 50% तो रूप को समय दिया था जब संसार छोड़ के गया वैरागी बनने के लिए है। तो हम अभी बाल बच्चे लेकर पिता लड़का का पढ़ाई इसका स्थिति, हमारे बच्चे के साथ लड़की की शादी कराई, इतने सारे जमींदारी है, अभी से कैसे ग्रस्त देगा? जब वो सब जमींदारी सब खत्म करने के बाद है जो बाद में देगा है? तो इसलिए हम लोग 50% कहता है ये समीचीन नहीं है, तो प्रैक्टिकल है कि 10% दे सकते, वो खुद बोला कि 10% देंगे। तो आप लोगों को तो नियम होगा ऐसे 10% देते होंगे गृहस्थ लोग हैं, देते कुछ है, देना चाहिए जिसकी अपने जितना है तो इतना देना चाहिए, कुछ अंश भगवान की सेवा में देना चाहिए। और घर भी तो घर भी वही भी कृष्ण के संसार है और भगवान का ही है, बच्चे भी भगवान के हैं। प्रभुपाद ने कहते थे कि जो स्कंद में जो भक्तों के घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं ये साधारण नहीं है, कई जन्म की स्वीकृति से, सब वैकुंठ से आए हैं। प्रभुपाद ने कहा कि सब वैकुंठ के बच्चे हैं, तो क्योंकि बचपन में इनको भक्ति, तो इनका भी केयर लेना बहुत जरूरी है, है? यदि कोई केयर नहीं ले पाता तो कहाँ दे दें, इस्कन में दे दें, हम लोग क्या लेंगे, उसको भक्त बनाएंगे। तो ये हमारे इंडिया में से भावुक नहीं, लेकिन रशिया में देखें, मैं रशिया एक भक्त ने रो रहा था वृंदावन में, मतलब तो एक भक्त अभी है दिल्ली में ऊपर ऐसे ही, वो इतने भावुक हो जाते हैं सारे संपत्ति घर बार बेच के सब इसकर में दे कि पूरा आ जाते सरेंडर करने के लिए, हैं करोड़ों रुपया दे देते। बात नहीं, वृंदावन में आया एक भक्त रो रहा था कि मैंने मेरे फ्लैट बेच के मेरे बैंक बैलेंस सब दे दिया भगवान को, सब लेक्चर महाराज लोगों की लेक्चर सुन सब दे दिया, अभी मैंने इधर आया प्रसाद हॉल में जा रहा हूँ तो क्या मांग रहा है, मेरे पास बहुत सारे पैसा नहीं है, रो रही थी मेरे को छोड़ नहीं रहे अंदर प्रसाद खाने के लिए। तो इसलिए बड़े समस्या हो जाते, लेकिन थोड़ा बुद्धि खर्च करना चाहिए, तो कैसे क्या करना है, तो इसलिए इमरजेंसी के लिए कुछ रखना चाहिए। जिसको किसको रखना चाहिए, गृहस्थों को, ब्रह्मचारी को नहीं। गृहस्थों को कहा गया कम से कम कुछ रखे, इमरजेंसी उसकी ज़रूरत है कभी है, लेकिन गृहस्थों के लिए नहीं कहा गया है, सॉरी ब्रह्मचारी के लिए नहीं कहा, ब्रह्मचारी तो पूरा डिपेंड रहेंगे, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदंतो गुरो रहितम आचरण दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सुहृद। गुरु को ही अपने एकमात्र सुहृद मित्र जानते हुए, कृष्ण की प्रतिनिधि जानते हुए पूर्ण निर्भर रहेगा गुरु के ऊपर, जो भी लाएगा मांगकर सब दे देगा गुरु को, पास में नहीं रखता ब्रह्मचारी कुछ, ये ब्रह्मचारी जीवन है, इसलिए वो निश्चिंत रहता पूरा। जो ये रहेगा पास में वही से सब शुरू होगा, कपटता शुरू होगा, जैसे पैसा होगा तो फिर झूठ कहेगा, हैं कई प्रकार की सब ये सब शुरू होता ना भक्ति में, बाधक वही मेन बाधक है, वही है शुरू होता से, वहीं से सारे प्रकार के पाप कर्म स्टार्ट होगा, फिर वहीं बहुत कुछ शुरू हो जाता। धन आ जाएगा, धन रहेगा तो फिर अब इच्छा होगी किसके लिए, इंद्रिय तृप्ति की, है? किसी लड़की ने किसी निर्धन व्यक्ति को शादी करना नहीं चाहेगी, जिसके पास वो पता लगे कि ये पैसा है पैर उसके पीछे पड़ेगी, है? तो इसलिए ब्रह्मचारी को कुछ नहीं रखना है, ब्रह्मचारी चुपचाप रहना, अथॉरिटी के ऊपर निर्भर कर गुरु के ऊपर, लेकिन गृहस्थों को कुछ जरूरी है कई फंक्शन, लेकिन फिर भी गृहस्थ लोग सावधान रहना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा धन है तो सोचते हैं तो इसको दे देना चाहिए, कृष्ण भावना में आंदोलन, जैसे प्रभुपाद जी कहते कि इसे आंदोलन के प्रचार में, आंदोलन को बढ़ाने प्रचार को बढ़ाने के लिए दे देना चाहिए, हैं? और कोई प्रश्न है? हाँ वो माता जी कुछ पूछना चाहते
महाराज,
ठीक है ठीक है।
अगर किसी के पास लक्ष्मी,
इसकी प्रश्न की बात, हाँ बोलो।
अगर किसी के पास लक्ष्मी नहीं है लेकिन उसके पास टाइम है, अभी
समय है,
समय है उसके पास, तो क्या वो अपना समय मंदिर के सभा में लगा सकता है? हाँ। दोनों सेम है,
लक्ष्मी देना और समय देना, जो पूरा सरेंडर हो रहा था वो और अच्छा है, फुल सरेंडर, फुल टाइम डिवोटी। उन्हें पूछ रहा था ना, वो राउरकेला में देखा था भक्त, वो भी फुल टाइम आए, पूछ रहा था चरणामृत दे रहे थे, मैं बोला क्या फुल टाइम भक्त बन गए, क्या नाम उनका है, वो ही बैठे उधर है, वो थोड़ा पैसा भी देते थे, पहले भगवान की सेवा में देते थे ना पैसा, मैं भी जाता था राउरकेला में, टिकट वही करके लाते थे, मैं देखा है वो टिकट देते, कम से कम टिकट का पैसा देते थे, सेवा करते तो साधु का भी कोई मंदिर की देते, लेकिन वो अभी फुल टाइम दे दिए, पूरा समय दे दिए, तो कौन सा श्रेष्ठ है आपको पता है, आप ही खुद बोलो, हैं ठीक है, तो पूरा पूरा सरेंडर होना अच्छा है ना, पूरा समय दे देना है। हाँ माता जी क्या पूछ रहे,
हरे कृष्ण, थैंक यू महाराज, बहुत सुंदर लेक्चर दिया, मेरा धन के
है?
ये प्रश्न धन के नहीं है, लेकिन भक्ति वो भी बहुत बड़ा, ये है कि मैं जब
शुरू से बोलिए, कुछ आवाज है क्लियर,
ये जो चर्चा चल रही है धन पर चल रही है,
हाँ।
लेकिन मेरा प्रश्न भक्ति के बारे में, वो भी बहुत बड़ा धन है,
हाँ।
मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब से इस्कॉन में आई हूँ, शुरू में प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते थे, तो मेरे को एक चीज़ ने बहुत आकर्षित किया, वो थी भक्ति,
हाँ।
भक्ति मतलब इतना मेरे को हो गया, मैं उसी की वजह से इस्कॉन में आई। भक्ति के बारे में बहुत सी स्टोरी सुनी, लेक्चर सुने कि भगवान भक्तों के दास हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सुनी, तो मैंने बोला ये तो बहुत सुंदर चीज़ है, भक्ति करेंगे तो भगवान के नज़दीक आ जाएंगे, भगवान हमारे अपने बन जाएंगे। लेकिन मेरे को आज ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में भी और किसी और की भी, कि कितनी भक्ति करो उतने ही कष्ट आते हैं। तो कष्ट आते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान आपके सब पाप धो रहे हैं, ये आपका लास्ट जन्म है माता जी, डोंट वरी। तो भक्ति करने से प्रेम, भक्ति मीन्स इंटेंस लविंग अटैचमेंट विद कृष्णा, हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति प्रेम ही है ना। तो जब हम इतना प्रेम करते हैं, फिर कोई बोलते हैं कर्म है, तो कर्म कहाँ आ जाएंगे? प्रेम में तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, कर्म नहीं आने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये आपका लास्ट जन्म होएगा, आपके सब पाप धुल रहे हैं।
तो भगवान भगवान यही चाहते कि आप मौत कहो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ।
भक्ति नहीं करते, लेकिन महाराज ये जो है भगवान सैडिस्ट तो नहीं है, उन्हें अपने भक्तों
को कुंती महारानी करना चाहिए। आपको तो फॉलो करना चाहिए किसको? कुंती महारानी।
कुंती महारानी तो वो कहती
थी, उनसे कष्ट ज्यादा आप नहीं उठा रहे। कुंती महारानी की तो भगवान का उस दिन
वो बोलती थी कि मेरे ऊपर क्लैमिटीज आए, मैंने सब, कुंती महारानी यही प्रार्थना करती थी कि मेरे ऊपर और कष्ट है,
और कष्ट दीजिए ताकि मैं
आपको याद करूं। पर महाराज क्या होता है, कभी इतने कष्ट आ जाते हैं कि जिंदगी में जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो भगवान क्या चाहते हैं?
जदहंग अनुगृह्णामि हरिस्य तदहंग सनेहि, भगवान कहते हैं। प्रभुपाद जी ने यही सोचते थे, प्रभुपाद जी को हम कष्ट उठाना पड़ा, कुछ नहीं था, चटाई कंबल लेकर वृंदावन में राधा दामोदर में जब रहते थे, तब कहते थे कि यही श्लोक वो याद करते थे बार बार, किसको?
कृष्ण।
ये विपद आने से तो भक्तों को और मुस्कान आता है, विपद आता तो उनको मुस्कान आता है, कृष्ण के कृष्ण मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हंस रहे थे, वो इतने दुख दुख में प्रभुपाद जी ने कभी दुखी नहीं हुए। हमारे दिल्ली में एक बार ड्रामा करते थे लोग सब, हमारे जो आए भक्त लोग, वो लोग इसमें ड्रामा देखा रहे थे कि प्रभुपाद जी के मैंने जो ऐसे ही घर बार छोड़ गया, सब चला गया, प्रभुपाद जी थोड़ा ऐसे ही दुखी ऐसे मोरस थोड़ा, लेकिन तुरंत ही और गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पर, तो तुरंत ही खड़ा होकर बोले कि ये गलत है, ये सीन तुम गलत दिखाया है। प्रभुपाद जी ने कभी अपने जीवन में दुखी, कभी उनके मुख में दुख की छाया कोई चेहरे में कभी ये नहीं आया। प्रभुपाद जी हमेशा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति है, सदा प्रसन्न चित्त में प्रभुपाद। जब दुख आता था प्रभुपाद और हंसते थे, कहते थे कि अरे कृष्ण परे अनेक, कहते थे कि जदहंग अनुगृह्णामि हरिष्ये तदनंग सनेहि। झांसी में प्रभुपाद जी ने प्रचार करते थे, उनका आयुर्वेदिक मेडिसिन का फैक्ट्री था लखनऊ में, उस समय के 40 लाख अभी कितने करोड़ का फैक्ट्री, लेकिन वो पूरा उजड़ गया, प्रभुपाद ध्यान नहीं दिए, सब लोग कर्म जो सब कर्मचारी सब लूट लिए। प्रभुपाद जी छोटे पुत्र आया प्रभुपाद जी को बोलने के लिए, प्रभुपाद जी चलिए हैं पिताजी चलिए वहाँ, जो कुछ बचा उसको तो लेंगे। प्रभुपाद जी ने कही प्रचार बोले कि बोले बेटा हमारा बंगाल में दुर्गा की कितने हाथ कहते लोग? 10 हाथ में 10 हाथ बोलते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने खड़े हुए थे कृष्ण कितना हाथ देखा था? हैं हजार हजार हाथ है, जब वो हजार हाथ से छीनेंगे कितने हाथ में पकड़ लोगे? हैं तुम कितने हाथ में पकड़ोगे? प्रभुपाद नहीं गए कई हजार हाथ तो छिड़, वो जानते कि सब कुछ जो हो रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है? कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण के बिना इच्छा के बिना एक पत्ता भी एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकता, भक्त जानता है इसको, विचलित नहीं होता है। रूपा जी मित्र तो हंस रहे थे बड़े खुश में, भगवान कितना कृपा कर रहे हैं मुझे सब छीन रहे हैं, अभी मुझे लास्ट में सब छीन लेने के बाद किसको छीनेंगे?
मुझे
स्वयं को इनको भी लेके जाएंगे। भगवान सब छीनने के बाद किसको चोरी करते हैं? मन को भी चोरी करते हैं, चौराष्टक में कहा गया माखन चोरी करते हैं, गोपियों की वस्त्र चोरी करते हैं, बहुत कुछ चोरी करने के बाद यह दिल को भी मन को भी चोरी कर लेते हैं, मन को भी चोरी कर लेते, भक्त का मन को भी चोरी करते हैं। ये चोरी बाकी है, ये चोरी जब कर लेंगे आपके मन को भी दिल को भी चोरी कर लेंगे, फिर आपके मन दुखी नहीं होगा, आप फिर मुस्कान आएंगे। प्रभुपाद जी ने कभी भी नहीं कहते थे कि मैं भक्त बन गया, कहे कभी नहीं। प्रभुपाद जी ने जितने भी प्रशंसा इनको मिलता था कभी नहीं लेते थे। एक एयरपोर्ट में प्रभुपाद जी ने एक बार हवाई अड्डा में उतार रहे थे, आने वाले थे, समय आ गया था, इसलिए प्रभुपाद जी का स्वागत करने के लिए दो ढाई सौ भक्त खड़े हुए थे, सब जब मैंने ब्रह्मचारी लोग और माताजी लोग सब खड़े हुए थे, सब नाच रहे थे गा रहे थे। तो संवादिक लोग बोले कि ये क्या कर रहे हैं, अभी पहले बार था ऐसे कुछ अमेरिका में, कोई ही कौन है नाच रहे गा रहे क्या कर रहे हैं लोग, आगे पूछे तुम लोग क्या कर रहे हो हैं पागल की तरफ नाच रहे ये क्या है। तो बोले कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर आ रहे हैं, अभी इनका फ्लाइट अभी उतारने वाला, हमको इनको स्वागत करने के लिए आए उनको। बोले कि ये कैसे स्वागत होता है, कोई देश का कोई आता है लीडर, कौन कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ गया है? तो उसके लिए कुछ मिलिट्री फोर्स आते हैं, वो लाइन में खड़े होते सावधान पोज में, जो आता तो फिर सैल्यूट लगाते हैं और कुछ तोप फुटा देते हैं, बस हो गया स्वागत। ये कौन सा कैसा स्वागत करेंगे, तो बड़ा उनको बड़ा उत्सुक लगा जो खड़े रहे। प्रभुपाद जी जब आए एयरपोर्ट के बाहर आए, ये सब तुरंत और जो नाचने गा बंद कर थोड़े सब सो गए नीचे दंडवत। तो बोले यार ये क्या चल रहा है, ये कौन सा फिर ऐसा कोई देखे ही नहीं थी वो लोग अमेरिका। तो फिर इसके बाद जो प्रभुपाद जी सन्निकट में आ गए और ये सब जैसे सब टेम्पल जितना प्रेसिडेंट थे अलग अलग टेम्पल का, कोई 50 टेम्पल का प्रेसिडेंट वो सब अलग अलग थे, सब लोग अपने अपने गार्डेनियल गार्लैंड लेकर गए थे। वो $100 का होता था उस समय अमेरिका की, एक गार्डेनियल गार्लैंड $100 की होती है। तो उसको लेकर एक की बात है गार्लैंड प्रभुपाद जी गई। तो बोले अरे क्या चल रहा है, और आश्चर्य हो गया। एक सांबादिक सब तो देख रहे थे तटस्थ हो गए, लेकिन एक थोड़ा साहस संचय करके प्रभुपाद जी के पास में गया, पूछा प्रभुपाद ने बोले स्वामी जी नहीं आर यू गॉड, आप भगवान है ना क्या, इतनी सम्मान क्यों है इतना गार्लैंड। तो प्रभुपाद ने कहे कि नो आई एम सर्वेंट ऑफ, लेकिन एक पैर आगे रख कर खड़े हो गए। वो संबंधी को फिर वेट किए पास में आ गए। प्रभुपाद ने कहे कि एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी ए सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं अभी भक्त नहीं बना है, भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप प्रयास में है, अभी भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन मरो नित्यानंद, पति मरो गौरचंद्र, प्राण मरो जुगल किशोर, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। मेरा धन क्या है, नित्यानंद के चरण कमल ही मेरा धन है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुषुत, निताई कौन है निताई, यही गुरु है, यही आदि गुरु है, उनके प्रतिनिधि सदगुरु है। इसलिए है ना निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाईते ना है, इंडिपेंडेंट हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, इनके चरण कमल को पकड़ना पड़ेगा। किनका है, निताय के चरण, उनकी प्रतिनिधि सदगुरु के चरण कमल पकड़ना पड़ेगा। तो सदगुरु के आदेश के जो जितने कठिनाई से जितनी स्ट्रिक्टली पालन किया, वही भक्ति का आगे बढ़ने का इसी से पता लगता है ये भक्ति में आगे बढ़ रहा कि नहीं। इंडिपेंडेंटली कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, वो उनकी संपत्ति है। किसकी संपत्ति है, निताय की संपत्ति है, ये गुरु की संपत्ति है। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आछे आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई पाछे पाछे। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति वही करता है जो गुरु के आदेश को पालन करता है। पहले क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, बद्ध जीव को सदगुरु स्वीकार करके उनसे पूछना चाहिए। अब उन्होंने कहते कि तुमको यही करना चाहिए, फिर उसी को प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जीवन में सफलता का यही एक ही रहस्य है। मेरे गुरु को मैं पूछा, मैं हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू, उन्होंने बोला कि क्या बोले भक्ति ठाकुर, यू आर यंग एजुकेटेड बॉय, टेक दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसी को ही केवल कोई मैं जाकर राधा कृष्ण के सामने खड़ा कर ऐसे प्रेमी जैसे साधारण लोग गाते ऐसे कोई गीत प्रभुपाद ने नहीं गाया है। ये कहे कि मैं बड़ा पे ऐसे नहीं, केवल गुरु के आदेश को पालन किए उसी से सफलता मिला है। तो इसलिए कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम मीराबाई बन गए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। आपके पहले से ही आप प्रारंभ किया कि मैंने इतने भक्ति किया है, प्रकृति में भक्ति हम कहाँ करते हैं, उसको जजमेंट दूसरे लोग करते हैं, हम खुद ही नहीं कर सकते है?
महाराज देन हाउ टू एडजस्ट भक्ति और ग्रस्त में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, उधर ग्रस्त संभालो उधर आगे भक्ति में ग्रस्त फैमिली, उसको उसका भी हमारा कर्तव्य है उसको देखना, और भक्ति के मार्ग में बहुत बहुत बाधाएं आती हैं।
बाधाएं तो आगे आएगी, भक्ति में बाधा आएगी इसमें, तो इसलिए भगवान ने आपको बाधा दे रहे कि आप सब छोड़ के फिर उनके शरण में ज्यादा उनको स्मरण करोगे अधिक से अधिक। इसलिए भागवत में सूर उपाख्यान दी गई माता कुंती की उपाख्यान दे और अन्य कई कष्ट कितने कष्ट सहे लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट एग्जाम्पल है, यानी कि रातारात भगवान प्राप्त हो जाएंगे हमको, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है उसके लिए, भगवान परीक्षा भी लेते हैं। तो हम संपूर्ण रूप में विरक्त हो जाते हैं। कुंती महारानी ने कहे कि ये पांच पांडव जो मेरी पांच पुत्र हैं इनको मैं इतनी प्रेम करती हूँ, किसलिए प्रेम करती हूँ, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, ये यदि कृष्ण के भक्त नहीं होते दुर्योधन की तरफ होते हैं मैं इनके मुख भी नहीं देखते हूँ। कुंती महारानी ने कही कि इसको इनको नहीं कि मेरा लड़का इसलिए इनको प्रेम करता हूँ, नहीं मैं इसलिए इनको प्रेम करता हूँ कि ये भगवान के कृष्ण की महान भक्त है, इसीलिए मैं इनके प्रति आसक्ति है। यदि ये कृष्ण की भक्ति नहीं करते दुर्योधन की तरफ होते इनकी चेहरा भी नहीं देखता हूँ मैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। शरणागत भक्त की ये लक्षण है, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो सहायता करता है उसको स्वीकार करता है, जो भक्ति के बाधक है इसको त्यागता है। अनुकूल्य तो संकल्प प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, सदा में कृष्ण मेरी किसी भी स्थिति में रक्षा करेंगे इसमें पूर्ण विश्वास, प्रहलाद के समान किसी भी स्थिति में रहने का जो क्या कर लेगा मेरी। कृष्ण रक्षति इति विश्वास गोत्रुप्ते वर्णम तथा मेरी लालन पालन जो आवश्यकता कौन देता है, भगवान ही देते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान जो कुछ करते मेरी मंगल के लिए करते हैं, भगवान किसी के अमंगल कर ही नहीं सकते, उनके स्वरूप ही मंगलमय है। सूर्य चाहेगा अंधकार को दर्शन करने, सूर्य कभी अंधकार दर्शन नहीं कर सकता। भगवान इसी प्रकार किसी प्राणी के अमंगल कर ही नहीं सकते। तत्ते नुकंपा सुसुमिख्यमान भुंजान एव कृतो विपाकम, भक्त ऐसा ही सोचता है मुझे बहुत कुछ भोगना था, भगवान ने कृपा करके थोड़ा सा दिए कष्ट है, भगवान ने इस स्थिति को चाहते हमारा माइंड क्या है देखते सब है। और गोत्रुप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य है, दैन्यता के साथ संपूर्ण शरणागत होना भगवान के चरण में, ये सब टेस्ट लेते हैं। तो इसलिए ये सब अग्नि इसमें से हमको उतरना पड़ेगा, इसलिए सब दिया गया उदाहरण भागवत में, इसलिए उपाख्यान सब दी गई कैसे कैसे इनकी भक्त लोग ने इसको कैसे समाधान किया, कैसे इसको सम्मुखीन किया है। यानी कि प्रभुपाद ने इसे रातारात प्रभुपाद बन गए, कितना कष्ट उठाना पड़ा उनको वृंदावन में। जब देखें प्रभुपाद जी को तो जानते हैं कैसे कितना कष्ट उठाए थे, एक लोटा कंबल चटाई बस कुछ नहीं था। ठीक है और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ है बचपन से भक्ति नहीं किए अभी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या बोल रहे आपको प्रश्न क्या, क्या फायदा मिलेगा? हाँ क्या फायदा मिलेगा, कोई काम करने पड़े फायदा चाहिए ना, कुछ मिलेगा तभी तो करेंगे है? और क्या ठीक है,
30 साल तक भक्ति हाँ। नहीं किया, अभी बाकी बचा है, बहुत टाइम कम है हमारे पास
बहुत टाइम। कोई भक्ति ऐसा ही चीज है कोई एक रात में भी भगवान को प्राप्त कर लेगा एक ही दिन में। खटांगो महाराज को कितना टाइम लगा, महाराज खटांगो की उदाहरण दी गई भागवत में दूसरे स्कंद में है। इन्होंने महान पराक्रमी राजा थे तो देवताओं ने इनको बोला के ले गया था राक्षसों को हटाने के लिए, राक्षसों के साथ लड़ाई चलता था देवताओं की, महाराज खटांगो जाकर उनको विजय में राक्षसों को पराजय करने में सहायता किया। जब वो देवता लोगों ने प्रसन्न हो गए देवराम इनकी सेवा में कहे कि मांगो कुछ सब कुछ जा जो चाहिए तुमको देंगे। खटंग महाराज ने क्या कहा, क्या मांगा, क्योंकि यहाँ पर जमराज भी उपस्थित है तो आप चित्रगुप्त को बोलो कितना मेरा परमायु का कितना समय रह गया है, अब बताया कि चित्र परमात्म तो अरे अब इनके तो समाप्त होने वाला थोड़ी समय है, तो उन्हें क्या कहे तो आप लोग क्या दोगे मुझे तुरंत ही वो भक्ति में शामिल हो गए बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत काले जमा
नित्यं स्मरेन मुक्त्वा कलेवरं ते प्रयान्ति सुमद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। अंत समय ही बहुत बड़े महत्व है, अंते नारायण स्मृति। अंत समय में भगवान को स्मरण करने के लिए काफ़ी समय आपका से है, ठीक है। नहीं तो भरत महाराज की तरफ पूरा जिंदगी भक्ति करके माने पूरा भजन करके अंत समय यदि हरिण की चिंतन करोगे तो क्या होगा है। इसलिए अभी से मन लग सकता है अंत समय है। इसलिए भक्ति कोई भी कर सकता, भक्ति कितने भी, ज़्यादा समय भक्ति के लिए नहीं चाहिए, भक्ति के लिए कोई भी छोटे समय में भी भक्ति की प्राप्त। मेन बात की सरेंडर, शरणागत कितने हैं हम, कितने सरेंडर होते हैं, सब कुछ कृष्ण के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे प्रभुदानंद सरस्वती
श्रील प्रभुपाद की
जय। हरे कृष्ण। तो हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने सुंदर तरह से महाराज ने हमको आज के विषय के ऊपर बताया और बहुत ही अच्छी तरह से हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको भी उन्होंने उनके शब्दों के द्वारा पूरी तरह से तहस नहस कर दिया उसका। तो किस तरह से हमें अपनी शक्ति को, हमारे धन को, हमारे समय को भगवान के लिए देना चाहिए, नहीं तो वो चला जाएगा, इस तरह से महाराज बता रहे हैं। तो हमें महाराज का संग कल भी मिलने वाला है। कल भी महाराज यहाँ पर भागवतम देंगे सुबह 8:40 से 9:30 बजे तक। और अगले हफ्ते में यानी नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को और फिर फ्राइडे और संडे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, वहाँ पे भी महाराज का संग मिलेगा भागवतम के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि महाराज के संग का लाभ उठाएं। और साथ ही में कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं, तो पहले महाराज का धन्यवाद करते हैं।
हरे कृष्ण।
तीन बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जैसे अभी श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है, अभी तक का स्कोर हम बताना चाहते हैं, यानी कल तक का 13 दिसंबर तक का। तो श्री श्री राधा कुंज विहारी मंदिर इसमें 14,389 महाबिट का वितरण हुआ है, हरि बोल। और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में 24,176 महाबिग बुक्स, हरि बोल। तो अभी तक का टोटल स्कोर है 38,565 महाबिग बुक्स, हरि बोल। शिल प्रभुपाद मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। तो हाँ, महाराज कह रहे हैं कि जो गृहस्थ भक्त भी स्पॉन्सर,
अभी धन के बारे में सुन रहे थे, तो जिनके पास में एक्स्ट्रा धन है सबसे किस में देना चाहिए? गीता वितरण में। यही महाप्रभु के आदेश है, जा रहे देखो तारे कह। कृष्ण उपदेश को हम पहुंचाने के लिए लोगों के पास में, जिसके पास धन है जो पूरा समय नहीं दे पा रहे, वो करें समय नहीं दे पा रहे तो ये दो, क्या धन दो, स्पॉन्सर करो गीता। हरे कृष्ण।